ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अब गरीबदास जी की वाणी और सुनाता हूं थोड़ी सी। कते चार वेद सठ शास्त्र वा काढ़े अठारह पुराण, गरीबदास चर्चा करे आजुल्ला सैतान। तू जुल्ला सैतान है और मोमन लाया सीत, गरीबदास उस बुरी में कौन तुम्हारा मीत। आज कौन है तेरा साथी? तो सबके साथ बिगाड़ कर रखता, सबको ऊट पटांग कहता रहता, तेरे साथ है कोई? एक तू एक कल खोरा एकला, तने दूजा नहीं सुहाव है। देख किसे उलाने दे रहे हैं भगवान को। अब किसके साथ बैठे तुम? सारी झूठ अटपट करो, तुमसे बात करे कैसे भगवान? तू एक कल खोरा एकला, तुए दूजा नहीं सुहाए। गरीबदास काजी पंडित अज मारे तुझे हराए। आज हरा देंगे तने सारे ज्ञान के उन्वर सिद्धियों में। अब परमात्मा क्या कहते हैं? सुन ब्रह्मा के वेद तू नीच जात कुलहीन, गरीबदास काजी पंडित व सिमटे दोनों दीन। चार वेद सठ शास्त्र व अठारह प्राण की प्रीत, गरीबदास पंडित कहें तो सुन जुल्हे मेरे मीत। ज्ञान ध्यान स्नान कर वो सेवे सालग राम, मूर्ति पूजा कर दे। और गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम, बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। गरीबदास जी करे वो भगवान कबीर साहब बोले, बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। गरीबदास ये पत्थर पटको इब हो ना पद में लीन, तुम इन पत्थरों में क्यों मत्था मार रहे हो? या भक्ति श्याला गुनाम की पूजा कर रहे हो? तुम भक्ति करो जो हम बताएं, तुम्हारा छुटकारा हो। अनंत कोट ब्रह्मा गए थारे अनंत कोट गए वेद, गरीबदास गति अगम है कोई न जाने वेद। अनंत कोट ये सालग मर गए और साथ है सेवन हार, ये ना जाने कितनी मूर्ति टूट ली और साथ में तुम पूजनीय मर लिए। गरीबदास अगम पंथ इस जुल्हे को दीदार, उस स्थान का मुझे मालूम है। मैं इस दुल्हा जिसने तुम दानक कह रहे हो, इस दानक के पास हो सारी शक्ति और सारी विधि, तुम इसको स्वीकार क्यों ना करते? तुम क्यों उदमस्तार रहे हो? काजी पंडित सब गए वो साहसिक अंदर पास, गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश। गरीबदास जी कह रहे अरे एक भी नुकणिया नहीं, कमाल के आदमी हो तुम, ये क्या कह रहा है? तुम सारे एक तरफ खड़े हो, अरे इतने प्रमाण देख लिए तुम फिर भी नहीं मान रहे हो ये भगवान है। तो गरीबदास जी कहते हैं काजी पंडित सब गए सा सिकंदर पास, सारे मिलकर सिकंदर जी के पास गए, कि हमारी बेइज्जती करता है। दूसरी बार गए फिर वो उलाना देन गए। गरीब दास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश है कि उस नगरी में सारे की बुद्धि वो पत्थर पड़ गए। एक भी नू कहने वाला नहीं रहे क्यों पीछे पड़ रहे हो, पता गलती के बताओ तो इन्होंने कहे मांस मिट्टी ना खाओ भाई, अच्छी भक्ति करो, ये खाओ ये ना खाओ, एक भी नू कहने वाला नहीं, सारे एक पक्ष में। और क्या कहते हैं, कबीर और रविदास ने या भक्ति बिगाड़ी समूल है, उलाना दे रहे हैं, उल्टा दोष दे रहे हैं रविदास और कबीर साहब को कि इन दोनों ने भक्ति बिगाड़ दी, ये बकवास करें सारी झूठ बोल रहे हैं। कबीर और रविदास ने भक्ति बिगाड़ी समूल, गरीबदास दो नीच हैं, ये करते भक्ति अदुल के दोनों नीच हैं ये, और भक्ति को के विपरीत बात कर रहे हैं, जो हम साधना करें उसको गलत बता रहे हैं। हिंदू से नहीं राम राम और ना मुसलमान को सलाम, गरीबदास दो दीन बीच ये दोनों बेकाम। अब जो कहे हैं ना देखे नहीं राम राम करते ना सलाम करते, तो वो रखे में बोलना है सच्चा है, अरे ये दोनों बेकाम आदमी है, अरे इन्हें नाक में दम कर रखे हमारे। सिकंदर लोदी को शिकायत कर रहे करते समय बोल रहे हैं, उमटी काशी सब गई सट दर्शन खलील, गरीबदास दोनों नीच हैं, इनको मारत ना कोई ढील। एक दंडी सन्यासी ता सिमटे हैं बैराग, गरीबदासों तन कन फटा भई सगन सबन से लाग। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के दंडी स्वामी ये लटठाए अंडा करे धरती में नहीं रखते, दंडी स्वामी बोलते ये पूरे के पूरा ग्रुप, और सिमटे हैं बैरागी गरीबदास वहां कन फटे कान पड़वा रखे जो नाथ, और भई सबन से लाग यानी सबके साथ ही उनकी ऐसे होगी, लाग नहीं होगा उसकी लगगी उनकी, क्योंकि परमात्मा सत्य कहें वो माने नहीं तो अपने आप दुश्मन मान लिए उन भोले व्यक्तियों ने परमात्मा को। तो गरीब दास चित्रार्थ कर रहे हैं कि सबके साथ उनकी लाग होगी लगगी। दंडी सन्यासी सिमटे हैं बैराग, गरीबदास ताकन फटे भई सबन से लाग, एक उदासी बनखंडी फूल पान फल भोगे, गरीबदास मारन चले सब काशी के लोग, गाल बजावे बम्ब बम्ब मस्तक तिलक संदूर, गरीबदास कोई भंग बखे कोई उड़ावे दूर। अब जिनको पता लग गया सारे रविदास और उनके साथ झगड़ने के लिए चल पड़े, कहते कोई तो बम्ब बम्ब करता रहा है, कोई माथे पर सिंदूर ला रहा है, कोई भांग खाओ पीवे एक ठूठा मार गए, और कोई नो दूर उड़ाता रहा है, सारे बकवादी इकट्ठे हो रहे। जुल्हे और चमार पर हुई चढ़ाई जोरे, गरीबदास पत्थर लिए मारे जुल्हाए तोरे। अब वो सारे आगे कहने लगे पत्थर हाथों में ले रहे, जय तू आज हार गया और तेरी विजय नहीं हुई तक तुझे यही मार मार के पत्थर दोनों को मारेंगे, ऐसी कंडीशन कर दी, ऐसा गरीबदास जी बता रहे हैं। फिर क्या बताया, पंडित और बैराग सब हुआ इकट्ठा आने, गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पासाण, एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, चांदी की तो चौकी बना रखी, पत्थर की पित्तल की मूर्ति रख रखी, कोई सोने की कोई कांसी की, एक पीतल की मूर्ति एक चांदी का चौक, गरीबदास एक नाम बिना यो सुनना है तेरे लोक। अब वो दो उन्होंने अपने अपने जुगाड़ जोड़ रखे थे, एक चांदी की पाटड़ी बना रखी, उसके ऊपर एक सोने की मूर्ति एक चांदी की मूर्ति तो रखी पीतल की, तो कहते हैं भाई एक परमात्मा की भक्ति बिना तुम्हें तीन लोग ठिकाना नहीं, इन मूर्तियां से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ऐसा भगवान उनको समझा रहे थे जब वो उसमें व्यस्त थे। काशीपुरी के सालगम सब ऐसे मिटे आए, एक सोने की सालगम जरी बाब पैरान, गरीबदास इस मनुष्य अकल बड़ी के स्वान। कहते परमात्मा कह रहे थे कबीर साहब, गरीबदास जी बता रहे हैं कि कोई सोने की मूर्ति बना रहे हैं उसको पूज रहे, कोई चांदी की, कोई पत्थर की बना रहे हैं, कहते कहते इसे मनुष्यात है, कहते अकल बड़ी के समान, कि ये तो एक पशु के समान व्यक्ति है, जब कुछ सुनते नहीं रहे, ऐसी पूजा कर भगवान पाना चाहते हैं। देखो पुणात्मा परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, या भूल थी हमारा। अब जैसे एक सेब है और सेब के गुण हमने सुन रखे हैं, बहुत बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा पौष्टिक है, खाने से ये लाभ होता है, तो सभी की इच्छा बनती है। और वह मूर्ति दिखा दी कि ऐसी मूर्ति ये है सेब, जैसे आजकल पत्थर का ऐसा गजब का सेब बना देते हैं, ओरिजिनल फेल कर दे। कई बार ये फल बेचने वाले देखे, उसने वो ऐसे बना रखी होती है, उन्होंने फल रखने की पोर्शन से खाने से बना रखे होते। उसमें एक बार दास सेब लेने गया था, तो सेब शाम के समय तो वो छांटते छांटते जिस उनमें छांट छांट कर सब उठाया करते, वो छांटते छांटते भी खराब रह रही थी। तो मैंने कहा भाई तू इन में से क्यों दे रहा, ये ऊपर से उतार दे, ये दे दे बढ़िया सेब। वो बोला वो नहीं देने की। मैंने कहा भाई अच्छा आदमी है तू, पैसे और ले ले, एक रुपया दो रुपया ज्यादा, तू ये क्यों ना देता। कहना ये देने की नहीं है, वो न्यून आ गए पत्थर की है। तो उसने उठा के दे दिया, ले ले वो हाथ में दरीवत रख, जो वही तो पत्थर है वो ऊपर और धर दिया। दस पांच दस नारी ले रहा था कि उस नो दिखने का स्टॉक बटेरा इसके पास, नो देख कर लोग आ जा, वो कुछ ऐसा जाल होता है इनका। तो वो सेब उन वर्तमान सेबों से अच्छी लग रही थी। तो परमात्मा ये कहा करते कि तुम चाहे तो सोने की बना लो मूर्ति, और चाहे चांदी या पत्थर की। देखो मूर्ति तो उसका स्वरूप है, वो गुण मूर्ति में नहीं है। जैसे सेब का वो स्वरूप था पत्थर की बना रखी थी, उस पत्थर में वो गुण वो लाभ नहीं मिल सकता। वो तो सेब खोजो कित पावे, इतनी सी बात कहा करते। वो सुनया नहीं करते कि उनकी तो रोजी रोटी थी उनको। अब सुनेंगे हम, भगवान ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, ऐसा जहान दिया, और सब कितना सुंदर वातावरण आज देखना। अभी तक तो इतनी बिजली गिरी नहीं है, मांस मिट्टी शराब की विकारों की, वैसे परमार तो होगी लेकिन अब छूट जाएगी। मैं देख रहा दास कितने पवित्र आत्मा त्याग दी जो पहले गलतियां करते थे। तो ऐसी जिस तरह समाज बिगड़ा है ऐसे सुधरे भी का टाइम वैसा ही लग जाए, एकदम नहीं बिगड़ा, बिगड़ते बिगड़ते सैकड़ों वर्ष लग गए। 50 वर्ष पहले कोई ऐसा विकार नहीं थे, 50 साल में कितनी बिजली गिर गई हमारे देखते देखते। तो अब ये 5-4 वर्ष में ये ऐसे वापस स्वच्छ भी होगा, होगा क्योंकि भगवान का विधान और ताकत है सब सब शक्ति में। अब कहते एक सोने की सालगम और जरी बाब पैरान, सोने की मूर्ति बना रखी उस पर भी हार पड़ा रखे सुंदर सुंदर। कहते जब यह सारी सोने की है, फिर ये और सोने की माला बुला क्या क्या खा काम करेगी इसके ऊपर। गरीब दास इस मुनस्त अकल बड़ी के स्वान, इत कुत्ता अच्छा कि इनकी अकल अच्छी, ये कहना चाह रहे परमात्मा। कहते कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सालग राम है, थरे किसे भगवान तेरे कुत्ते के मुंह में, तो कुत्ता मूत क्या थरे भगवान के मुंह में। गरीब दास जुल्ला कहे तारी अकल गई किस गांव में, तारी अकल कौन से गांव जा रही है। इसने तो अभी भगवान मान रहे हो, कुत्ता मुंह में मूत गई बता भी ना से क्या, वो मुंह तो मोर लेता नो कम से कम है, या टांग तोड़ देता कुत्ते की, भगवान होता थे। कुत्ता मुख में मोते है ये कैसे सालग राम में, गरीब दास जुल्ला कहे अकल गई किस गांव में। धोए धाए कर निक्के किए, दो धाके फिर साफ किए, और फिर आमारी धार, दूसरी बार फिर कर गया काम। गरीब दास उस पुरी में वो जुल्ला हंसे चमारे, दोनों हंस रहे परमात्मा और उसका बच्चा साथ हंस रहे हैं, वाह रे पिंड तो लगे रहो। तीन बार मुख मोतिया ये सालग बहे असोद, गरीब दास तो वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो बुद्धि माने ज्ञान है, अब परमात्मा कह रहे हैं कि तीन बार कुत्ते ने मूर्ति दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध, और इन चारों वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को उठाए फिरते हो। वेद पढ़ने पर भेद न जान ये बच्चे पुराण अठारा, और पत्थर की पूजा करो ये भूल गए सृजनहारा। अब ज्यादा समय ना लेकर के कहने का भाव ये है, लास्ट में फिर इनका यहां फैसला हुआ। सिकंदर बोला जी आप करो दया। उस समय परमात्मा ने एक के बार पुकारा था, जय हो बंदी छोड़ सत्साहिब, अपने आप उठ के सारे और उनकी गोदी भागे अपने आप चल के। तब वो पत्थर शर्म मारे हैं कि दानक के पास कैसे चली गई अब भक्ति। परमात्मा बोले दानक के पास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, काम लाभ लेना तो उठा लो, ना पछताओगे। कहते समझा है तो सर दर पाओ भौर नहीं रे ऐसा दाओ। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु, गरीब दासिये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु, गरीब दासिये वक्त जात है रोगे इस पैरे। कहते तुम जो सच्चा भगवान है सफेद, कहते सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, सिर पर छत्र है सफेद और मुकुट उस परमात्मा की, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दासिये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। ये हाथ से मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर इस समय को रोया करोगे कुत्ता बने के ऊपर न मुंह करके, और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समझा है तो सर तर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अब आपको भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। सत साहिब।
नमस्कार सर।
सत साहिब जी,
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
दुर्गा राम नाम है जी, पाली राजस्थान से आया हूँ।
सर क्या काम करते हैं?
मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ जी।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं उनसे पहले पाली राजस्थान के अंदर जो सुराणा खेतला जी हैं, सुराणा खेतला जी की भक्ति कर रहा था। उसके बाद में पाली के अंदर जो सोमनाथ मंदिर है वहां में सुंदरकांड का पाठ किया करता था, हर मंगलवार को व्रत किया करता था, और ये मैं भक्ति कर रहा था।
तो सर जो भक्ति आप करते थे, इस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था?
उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर उसके बाद में मुझे एक आसाराम जी का शिष्य मिला, तो मैं 2010 में आसाराम जी, 1998 में आसाराम जी का शिष्य बना, और 12 साल तक मैंने आसाराम जी की साधना की। आसाराम जी की साधना करने के बाद उन्होंने जो मंत्र जाप मुझे दिए थे, और उस मंत्र जाप का मैं जाप भी कर रहा था, और फिर उन्होंने एक आदेश दिया था कि भाई कम से कम 11 माला रोज की होनी चाहिए। तो मैं गुरुदेव जी का तस्वीर ऐसे लगा देता था और सामने बैठ जाया करता था, एक आसन दिया था और वो 120 रुपये लिए थे मेरे से, और एक अंदर हाथ डाला जाता था, फिर ये अंगुली ऐसे रखी जाती थी और ये दोनों अंगुली उस माला के टच नहीं होती थी, फिर ये ऐसे जाप किया करता था, गुरुजी की तस्वीर में ऐसे लगा दिया करता था। तो फिर मैं जाप करते करते मेरे को नींद आ जाती थी, तो वो तस्वीर ऐसे कैसे रह जाती थी। फिर मैं सुबह उठ के वो तस्वीर, गुरुजी का फोटो ऐसे लगा हुआ रहता था आसाराम जी का, तो मैं ऐसे वो फोटो देख लेता था। तो उस समय जिस दिन मैंने वो फोटो देख लिया, उस दिन भाई साहब मेरे कहीं न कहीं मेरे ऊपर मार ऐसी पड़ जाती, मेरे ऊपर जूते पड़ जाते। तो फिर मैंने ऐसा किया कि भाई ऐसा मैं करूं, इसका क्या फार्मूला करे भाई, उन्होंने ये भी आदेश दिया कि भाई जाप भी करना पड़ेगा। तो फिर वहां सेवकों से मैंने पूछताछ भी की, तो वो कह भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं कह भाई मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो भाई कि तुम जाने तुम्हारा काम जाने। तो फिर मैंने एक नया फार्मूला मैं खुद ने अपनाया कि भाई ऐसा करूं कि मैं तस्वीर दो माला जाप कर दूं और तस्वीर को उल्टा रख दूं, ताकि मैं सुबह उठूं मुझे मुंह नहीं दिखे और मेरे को मार नहीं पड़े। तो फिर मैं भाई साहब में ऐसे भक्ति किया करता था।
तो संत आसाराम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था?
मेरे को 5 मंत्र बताए थे, मैं गांधी मैदान जोधपुर में आश्रम गांधी मैदान में मैंने उपदेश लिया था, उन्होंने वहां पे 5 मंत्र बताए थे। वो हरिओम, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हरियम, और 100 मंत्र बताया था जो अंदर और बाहर, अंदर बाहर का बताया था उन्होंने, और मैंने हरियम मंत्र वहां सिलेक्ट किया था ऊपर हाथ करके। उन्होंने बताया था भाई कि जो मंत्र लेना चाहते वो ऊपर हाथ कर लो, तो मैंने ऊपर हाथ किया था कि भाई मैंने हरियम मंत्र ये डिसाइड किया है।
तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने संत आसाराम जी से नाम उपदेश लिया था और आपने हरियम मंत्र उनके द्वारा दिया हुआ, आपने मंत्र लिया और आपने उसका जाप किया और आप उनकी तस्वीर हाथ में रख के 10 माला जाप करते थे और वैसे ही सो जाते थे, आपको नींद आ जाती थी और सुबह उठते थे तो तस्वीर आपके हाथ में होती थी और आप सबसे पहले उठते ही संत आसाराम जी की तस्वीर का आपको दर्शन होते थे तो आप बता रहे हैं आपको जूते पड़ते थे, फिर आपने दो माला जाप करनी शुरू की और तस्वीर को उल्टा रखना चालू कर दिया, और तो जो तस्वीर आप उल्टी रखते थे और दो माला जाप करते थे और जो 10 साल तक आपने साधना की उसको आपको क्या लाभ मिला?
मुझे कोई लाभ नहीं मिला उस साधना से, उल्टा गिरावट में आता रहा, उससे कोई मुझे लाभ नहीं मिला।
तो सर परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आप कैसे आए?
परम संत बंदी सूर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में परमात्मा की दया हुई। हमारे वहाँ एक भगत जी थे जिसका बैजी नाम था, उन्होंने मुझे भक्ति सौदागरों का संदेश एक पुस्तक दिया था। उस पुस्तक ने मैंने पढ़ा, उससे पहले मैं व्रत किया करता था, तो उस पुस्तक के अंदर जो मैंने पढ़ा और उसके अंदर जो व्रत का लिखा था परमात्मा ने, तो वो मैंने व्रत करने बंद कर लिए। फिर एक दिन मैं मेरे थ्री व्हीलर टैक्सी है जो वो टैक्सी चला रहा था और टैक्सी चला रहा था उस दिन अचानक मुझे हाईवे रोड पे चल रहा था तो आगे से एक ट्रक आया, तो फिर मुझे दूसरा कोई याद नहीं आया। मुझे ऐसे ही याद आया उस भैर जी के गुरु जी, ऐसे मुझे परमात्मा याद आए और फिर मैं वो टैक्सी ला के घर पे खड़ा किया और उस भगत जी से कहा भाई अभी आश्रम चलो, आपके जो गुरु जी है मैंने उनको याद किया और मेरी आज जान बच गई। तो उन्होंने कहा भाई अभी नहीं चलेंगे, दो तीन दिन बाद में सत्संग है, सत्संग में चलेंगे। मैं क्यों भाई साहब भगत जी में सत्संग तक तो मैं नहीं रुक सकता, या तो आप कल तक की मेरी गारंटी ले लो कि भाई मैं यहाँ अगर मर जाऊं तो फिर आपकी गारंटी रहेगी। तो उनके भगत जी के बाल काटने की दुकान थी और उन्होंने कहा भी आज तो गिरेगी, आज मैं नहीं चल सकता। मैं क्यों कैसे भी हो भी आपको आज चलना पड़ेगा। तो उस भगत जी ने उस दिन ही दुकान बंद की और मैं यहाँ जो दौलतपुर रोड बरवाला आश्रम आकर परमात्मा से नाम उपदेश लिया।
परमचंद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
सबसे पहले तो मेरा जो जीवन था परमात्मा की दया से वो सफल हुआ और मुझे सत भक्ति मिली, जो भक्ति मैंने ऐसी कभी सोची नहीं थी। मैंने तो ये सोचा था कि मेरे दादाजी पितर हुए उनका बड़ा मंदिर बनाऊंगा, वहां पे बगीचा लगाऊंगा, मगर परमात्मा ने ये सारे मेरे झंझट मेट दिए और मुझे सत भक्ति दी परमात्मा ने। उसके बाद में एक पहले जो बच्ची जन्मी थी उसके माता का जो मेरी भगतमती है उसके भी वो भूत प्रेतों का साया था, वो उनका दूध पिया करती थी तो वो बच्ची मर गई। फिर उसके बाद में जो दूसरी बच्ची जन्मी तो जहां भी मैंने बताया कि भाई ये इनका ऐसा ये जो हुआ है भूत प्रेतों का साया है इसलिए ये भी बच्ची आपकी नहीं बचेगी, तो मैं यहाँ आश्रम में अकेले आया था। फिर यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की और मालिक ने कहा भी बेटा कोई बात नहीं उसको सन्नामत दे देना, तो सन्नामत देते ही वो बच्ची एकदम स्वस्थ हो गई। फिर हमारी भगतमती को भी विश्वास आया और वो भी यहाँ आई और अभी भी आई हुई है, यहाँ आज भी आई हुई है, और उस दिन से वो घर में सब सारे सुख हुए। और ये तो जो शारीरिक सुख हुआ, फिर इनसे पहले भाई साहब मुझे जो हर छह महीने बाद में बुखार आया करता था और इतना बुखार आया करता था कि मैं एक महीना मुझे लगातार बुखार आ रहा था। अभी मैं परमात्मा की शरण में आए मुझे 3.5-4 साल हुए, मेरे को आज दिन तक कभी बुखार नहीं आया और ये मुझे सुख मिला। इसके अलावा ये जो सुख मिला शारीरिक सुख मिला मेरे परिवार को, इसके अलावा जो सुख परमात्मा ने दिए, मेरे पास साइकिल की भी व्यवस्था नहीं थी, फिर परमात्मा की दया हुई, मैंने पैसे ऊपर करके एक थ्री व्हीलर टैक्सी लिया और उस टैक्सी का पैसा भी मैं नहीं पाल सका, अभी तक नहीं पाल सका। गया जो सत्संग में मैं आया था 2 महीने पहले, परमात्मा से ऐसे ही अरदास लगी थी मालिक कि मैं ये टैक्सी दिन भर चला रहा हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ, परमात्मा मुझे ऐसी दया कर दो कि मुझे 4 व्हीलर दे दो। तो फिर परमात्मा ने अभी 3.5 लाख की गाड़ी 4 व्हीलर दे दी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। परमात्मा ने कहीं से भी यहाँ फोन किया, मेरे मालिक पैसे नहीं, परमात्मा ने यहाँ भक्तों ने कहा भाई पैसे तो परमात्मा व्यवस्था करेगी, तो मालिक ने वो व्यवस्था करी और आज मेरे पास जो मेरे पास साइकिल ली थी आज परमात्मा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दी है 3.5 लाख की।
सर जैसे पहले आप आसाराम जी की भक्ति करते थे और आप बता रहे हैं कि सुबह सुबह यदि उनकी तस्वीर के भी दर्शन हो जाते थे तो आपको जूते पड़ते थे, और फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको सत भक्ति दी तो उससे आपको आर्थिक लाभ भी हुआ, आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला, ठीक आपको ये पता चला कि भाई किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मोक्ष इंसान का मोक्ष कैसे हो सकता है, आपके शरीर में भी सुख हुआ, आपकी संतान भी सुखी हुई,
सारा परिवार मेरा सुखी हुआ
और आपको रोजगार भी परमात्मा ने दिया। तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा यहाँ आए हुए हैं, आप कहीं भी भटक रहे हो, कहीं भी पहले मैं भी भटका, मैं भी मेरी भूल में चला, तो आप मेरी तरफ भूल में मत चलिए और आप यहाँ आइए। और विशेष तौर पे मैं उनको जो कह रहा हूँ, जो मेरे जो पुराने जो अभी वो मेरे भाई है, मगर जो पुराने जो भाई है जो आसाराम जी के यहाँ जाते थे, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यहाँ आइए। बस पिंचर हो चुकी है, ड्राइवर और खलासी छोड़कर चले गए हैं, और फिर भी आप उस सीट पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बस चलेगी, बस के सारों सके पिंचर हो चुके हैं। और मेरी ये प्रार्थना है, आप मुझे छोटा भाई समझिए और यहाँ आकर आप एक बार देखिए, आप सदग्रंथों को पढ़िए। बापूजी गीता जी का ज्ञान तो देते थे, मगर जो सारा ज्ञान वो गीता जी के विरुद्ध थे। उन्होंने गीता में साफ मना किया हुआ भाई पितरों की पूजा नहीं। और मैं वहाँ अहमदाबाद आश्रम में कई बार मैंने सामूहिक श्राद्ध निकाले थे वहाँ पे, और गीता जी मना कर रही भाई ये पितर पूजना व्यर्थ है। जो भक्ति बापूजी कर रहे थे और आपको भी करवा रहे, और मैं भी कर रहा था, मुझे भी सुख नहीं मिला, और बापूजी जो कर रहे थे और उनसे उनका जो हाल हुआ है, तो फिर आपका क्या हाल होगा। इसलिए आप यहाँ बरवाला आश्रम आओ, एक बार आकर आप देखिए यहाँ भक्तों का। आप मैं वहां जाता था, अहमदाबाद आश्रम गया, सूरत आश्रम गया, 5 रुपये में वहां पे खिचड़ी मिलती थी, वो भी धक्के मुके से, और मैंने कई बार धक्के मुके से खिचड़ी खाई वहां पे 5 रुपया देके। अभी तो 15-20 रुपये हो गए, उस समय मैंने 5 रुपये में खिचड़ी खाई थी। एक आदमी स्नान करने के लिए जाया करता था तो 2 आदमी कपड़े के पास बैठा करते थे। और यहाँ परमात्मा के दरबार में आप कोई भी चीज यहाँ छोड़ के जाइए, आप कोई भी चीज आपकी गुम हो जाएगी, फिर आपको भगत आपको लाके सौंपेंगे। और एक बार आप यहाँ आकर यहाँ आप देखो परखो, फिर आप नाम उपदेश लो। और ये मेरी प्रार्थना है, परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ
जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी विश्व के सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया है कि कोई उन्हें गलत साबित करे तो वो उसका अनुयायी होने के लिए प्रतिबद्ध अथवा तैयार है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूरे विश्व को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना प्रदान करा के भक्त समाज को सही दिशा प्रदान कराना है, जो सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। विश्व के सर्व धर्म गुरुओं से निवेदन है कि वे हमारे इस जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए तथा भक्त समाज को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अब तक जिन भी संत महात्माओं ने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे मुसलमान धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है।
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अल रसूलिल्लाह वाल आली वसाबी अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल याहिल किताब تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانتولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, تعالوا الى کلمت سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی، صرف خدا کی عبادت کرے۔ ونا نشرک بہ شیئا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم ہمارے میں سے کسی اور کو خدا کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ فنتولو، اگر وہ مڑ جائے، فقل شدو بیننا مسلمون، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اور ہماری ساری رضا اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ کوئی بھی غیر مسلمان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم سمجھنے کے لیے ہمیں دھرم کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا۔ اور سب سے اونچی، سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید۔ یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے، اس کے بعد ہے اپنیشد، پرانس، اتہاس، منوسمرتی، لیکن سب سے اہم ہے وید۔ اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کی کتابوں کا۔ اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، تیسرا اس کے کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، پانچواں آخرت پر ایمان لانا، اور چھٹا قدر تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکن میں یکسانیت۔ سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا۔ ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ کہیں گے 3 خدا، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں، وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے، وہ ہندو کہے گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان، ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کی معنی عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، انسان خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہے. عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. صرف ایک اہم فرق ہے کا. اگر ہم اس کا فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے.
درشکو, ابھی آپ نے سنے مسلمان دھرم کے پروکتا ڈاکٹر زاکر نائک جی کے وچار, اور آئیے اب جانتے ہیں جگت گرو تتو درشی سنت رامپال جی مہاراج جی کے وچار.
پرم پتا پرماتما پورن برم ساری سرشٹی کے رتنہار کل مالک, کبیر دیو کبیر پرمیشور, اللہ اکبر پرم اکثر برم, کبیر صاحب جی کی عصیم رضا سے آپ پنیاتمائیں ستسنگ سننے کے لیے اپستھت ہوئے. ستسنگ میں آنے سے پرانی کو گیان ہوتا ہے کہ مانو شریر آپ کو کس لیے پراپت ہوا. یہ جانکاری ستسنگ میں دی جاتی ہے کہ مانو شریر پرماتما پانے, جنم اور مرتو کے اس دیرگ روگ کو سماپت کروانے کا ایک وکلپ ہے, ایک سادھن ہے, اور منوش جیون پا کر کے ہم پرماتما کی سادھنا نہیں کرتے, یا کرتے بھی ہیں تو شاستر ودھی تاکر منمانا آچرن کرتے ہیں, تو وہ بھی سادھنا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے, ویرتھ ہے. ستسنگ ارتھات یتھارتھ بھکتی گیان ادھیاتم گیان پرماتما سوئم ہی آ کر کے بتاتے ہیں, کیونکہ ہم جس لوک میں رہ رہے ہیں یہ سیطان کا لوک ہے. اس کو پرمیشور نے اور پرماتما پراپت سنتوں نے اس کو کال کہا ہے. جوت سروپی نرنجن ہے اس کا نام, اور ویدوں میں اس کو برہم کہا ہے. یہ سوئم بھی اپنے آپ کو برہم کہتا ہے. برہم سے اوپر پربرہم ہے ایک شکتی. یہ برہم, یہ سرپرس, یہ کال, یہ سیطان ہے. اس کے 21 برہمانڈ ہیں. اس سے نیکسٹ ہے پربرہم, جس کو شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 15 کے سلوک نمبر 16 اور 17 میں, 16 میں اس کو سرپرس کہا ہے, 21 برہمانڈ کے سوامی برہم کو کال کو. اور اس سے نیکسٹ جو برہم ہے اس کو اکثر پرس کہا ہے, اس کو پر برہم بھی کہتے ہیں. وہ 7 سنک برہمانڈ کا مالک ہے, سوامی ہے. اور ان سے اوپر تیسرے نمبر کا اوور آل کنٹرولر جو ہے وہ پرم اکثر برہم ہے, اس کو پرم اکثر پرس بھی کہتے ہیں, اس کو اللہ تعالی بھی کہتے ہیں, اس کو اللہ اکبر بھی کہتے ہیں, اس کو کمپلیٹ گاڈ بھی کہتے ہیں. تو جو یہ برہم ہے اس کو سرپرس بھی کہتے ہیں, اس کو کال بھی کہتے ہیں. سنتوں نے اسے کال کسائی بھی کہا ہے, اس کو سیطان بھی کہا ہے. اسی کال نے چاروں ویدوں کا گیان بتایا, اسی کال برہم نے شریمد بھگوت گیتا کا گیان شری کرشن میں پرویش کر کے بولا, اسی کال برہم نے قرآن شریف کا گیان, قرآن مجید کا گیان جبریل دیوتا کے مادھیم سے, جبریل فرشتے کے مادھیم سے حضرت محمد جی تک پہنچایا. یہ کال ہے, اور اسی نے پویتر بائبل کا گیان بھی اسی کال نے بولا. اپنے آتماؤں, یہ کال جو ہے ایک ایسا سیطان ہے, ایسا ایلیمنٹ ہے, یہ نہیں چاہتا کہ یہ جیو سکھی رہیں, یہ نہیں چاہتا کہ ان کو اللہ تعالی کی अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जावे। ये अपने सत्र का ज्ञान देता है, फिर अंत में ऑप्शन छोड़ देता है कि उस अल्लाह अकबर की अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी बाखबर से पूछो अर्थात तत्वदर्शी संत से जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का ये मिला जुला सारांश है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, बताता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर सच्चिदानंद गण ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर बताता है उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते हैं, संभवात माने जन्म लेने वाला, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं अधिकतर लोग, और कुछ असंभवात कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं या आता ही नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से पूछो। और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कबीर नामक अल्लाह है, अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे सिद्ध हो गया कि तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इलम वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है इनके अंदर, कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों वेद। यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है, वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो। और अपने सत्र का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज कर इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है, जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो कालब्रह्म के दिए हुए हैं उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं और परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म जो परमात्मा कबीर अल्लाह कबीर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं और क्या कहते हैं वो आकर के चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे ईरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं उनको अपने ज्ञान से अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं यथार्थ भक्ति ज्ञान साधकों को बताते हैं लेकिन उससे पहले ये काल भगवान ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है आंट देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसे ये जग तुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं वो अल्लाहु अकबर कहते हैं पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर ना समझकर ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते और इनके जो प्रारब्ध के अंदर अर्थात जो किस्मत के अंदर दुख है पाप कर्मों के कारण दुख होते हैं तो वो पापों का नाश भी वो साधनाएं नहीं कर सकती अर्थात वो कंकर पत्थर इकट्ठे किए बैठे हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना ना करके समर्थ भगवान की भक्ति ना करके अन्य उपासना जो करते हो अन्य साधनाएं करते हो वो तो कंकर पत्थर समझो यानी डले इकट्ठे कर रखे और जो यथार्थ साधना है वो हीरे मोती लाल है। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा कर जगह जगह जाके ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणिक बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित ना होने के कारण इन कंकर पत्थर डलों को बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं। फिर बताते हैं पर भी लेन जात है दुनिया हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा बड़े दयालु हैं ये रहमत वाले हैं और जैसे जो कुरान शरीफ का ज्ञान देता है और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है और जो वेदों का ज्ञान दाता है ये कंप्लीट गॉड नहीं है ये रहमत नहीं कर सकता ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। यदि किसी का शुभ संस्कार है तो शुभ ही मिलेगा और किसी के ऊपर कोई पाप कर्म का संकट आना है तो आवे ही आवेगा उसको रोक नहीं बदल सकते। केवल एक कंप्लीट गॉड जो है अल्लाह ताला बोलते हैं जिसको कादर भगवान बोलते हैं समर्थ परमात्मा कहते हैं उसको वेदों में गीता में परम अक्षर ब्रह्म कहा है पूर्ण पुरुष पूर्ण परमात्मा कहा है और संत बादशाह में उसको सत्य पुरुष कहते हैं और कुरान शरीफ की भाषा में उसको अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, तो वो समर्थ परमात्मा है। वो हमारे संस्कारों को बदल सकता है। हमारे भाग्य में यदि कोई हानि होनी है, कोई पुत्र की मृत्यु होनी है, पुत्री की होनी है, या हमारा ही कोई ऐसा संस्कार मृत्यु का है या कोई रोग का है, तो वो कंप्लीट गॉड, वो समर्थ परमात्मा उस संकट को समाप्त कर देता है, वो दुख नहीं आने देता। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने हमें आकर के बताया है, उस अल्लाहु अकबर ने, कंप्लीट गॉड ने, कि तुम सब मेरे बच्चे हो, यहां काल ने आपको भ्रमित कर दिया गलत ज्ञान दे के, और मेरे ज्ञान को तुम ग्रहण करो, मेरे संतों पर विश्वास करो जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं सतलोक लेकर गया था उनको वापस छोड़ा है, वो मेरे परम संत हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करो। वो कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुराणी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो काशी के अंदर हुए हैं महापुरुष, उनको परमात्मा मिले। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा का वो स्थान देखा जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी नाश ना हो, सदा रहने वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता। तो वो स्थान जो है उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने आकर के वो ज्ञान दिया है, और उन महापुरुषों को वहां लेकर गए उस शाश्वत स्थान में, संत भाषा में उसको हम सतलोक कहते हैं। सतलोक माने अविनाशी स्थान, और वहां से फिर ले जाकर उनको सबको वापस लाए। उन महापुरुषों ने अपने आंखों देखा ऊपर परमात्मा की स्थिति कैसा है भगवान, और कैसा हो वो लोक, कैसा हो वो स्थान, उसकी जानकारी उन महापुरुषों ने आंखों देखी बताई और अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये परलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं, हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते हैं। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बोला है, जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते हैं कि उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, उसमें कहा है, उस सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती, गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में वर्णन किया है, उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है, और ये तीन शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो प्रोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष ये तना है, ये मोटी डार है, ये तीन शाखाएं हैं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखता है ये पेड़ से ही शुरू होता है, तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो ये देवता समझो, और आगे हम ये पात रूप संसार है।